संतप्त मानस शांत हूँ। हम निद्रा अधिकार आरंभ करते हैं। दिसंबर अधिकार बाकी रह गया था, वो 8 व्याख्यानों के माध्यम से वो देवलाली में पूरा हो गया था। वहां 2-2 व्याख्यान किए थे रुद्र में, तो 4 दिन में 8 हो गए थे। अब निद्रा की बात आरंभ होती है। इसका मंगलाचरण है, शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार, शुद्धात्म की साधना कही निर्जरासार। ये भाव निद्रा की अपेक्षा है, अपने आत्मा में लीन रहना। आत्मा की प्राप्ति की बात क्यों नहीं की, क्योंकि प्राप्ति की बात तो संवर में हो चुकी है। आत्मा की उपलब्धि संवर में हो गई है, और तो संवर अधिकार के कलश आप जितने पढ़े होंगे आपने, अथवा गाथाएं भी, उसमें उपलब्धि उपलब्धि की ही चर्चा है। अभी भी उनके कलशों को आप पाठ करेंगे तो हर गाथा में, हर कलश में आत्मा की उपलब्धि की चर्चा होगी। निद्रा आत्मा की उपलब्धि का नाम नहीं है। आत्मा की लीनता के माध्यम से जो उपलब्धि उनने प्राप्त की है, उसमें और वृद्धि करना, उसका नाम निद्रा है। वास्तव में हम विचार करें गंभीरता से तो उपलब्धि है संवर, शुद्धि की उपलब्धि है संवर, शुद्धि की निर्जरा है, शुद्धि की वृद्धि है निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता है मोक्ष। ये 3 वाक्यों में संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की चर्चा हो जाती है। फिर एक बार बोलता हूं, संवर की, आत्मा की उपलब्धि, इसका नाम है संवर। आत्मा में के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम है निर्जरा। और आत्मा के आश्रय से शुद्धि की पूर्णता, इसका नाम है मोक्ष, है ना। अब इन निर्जरा की बात करते हैं, माने आत्मा में शुद्धि उत्पन्न हो गई, उसका अभिनंदन भी हो गया संवर अधिकार में। अब कहते हैं कि वो निर्जरा कैसे होती है, उसकी वृद्धि कैसे होती है। शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार, कि भैया अच्छा आचरण हमारा अच्छा होना चाहिए। ये तो आपने कहा तो बहुत ठीक है, सभी लोग कहते हैं आचरण अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमको तो आप बता दो कि अच्छे आचरण का मतलब क्या है, है ना? तो दो लोग कहेंगे हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरे की माँ बहन तरफ खराब निगाह से मत देखो, परिग्रह मत जोड़ो, ये कहेंगे, क्रोध मत करो, मान मत करो, कसाएं मत करो, इसको ही लोगों के श्रेष्ठ आचार कहते हैं। ये अच्छा आचरण है, बस खत्म। अब इसमें हम जरा थोड़ा बारीकी से देखें तो इसमें तो नहीं करो नहीं करो ही आया, तो ये दुराचार मत करो, ये अर्थ हुआ इसका। ये सब दुराचार है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह और कसाएं, तो दुराचार मत करो, ऐसा अर्थ हुआ। तो करें क्या, पॉजिटिव क्या है, तो उसी में से हम पॉजिटिव खोजेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे। कहते कहें अहिंसा करो, सत्य बोलो, अचोरी पालो, ब्रह्मचर्य से रहो, अपरिग्रह धारण करो। तो हमने क्या किया, इन उन नेगेटिव जो पीछे से था नहीं शब्द से, उसे हमने आगे लगा दिया आ। हिंसा मत करो, अब अहिंसा। तो मत का मत है ना, मत माने ना होता है, उन ना को हमने आगे लगा दिया। और क्या किया इसमें, अहिंसा करो कह दिया ना, वास्तव में उस नेगेटिव बात को ही कही। फिर कहीं अहिंसा, हिंसा मत करो, तो ये जो पाप का निषेध किया था, तो कहेंगे अहिंसा पालो। तो अहिंसा क्या पालोगे, वही हो जाएगी, लौट फिर के जाके कहेंगे हिंसा मत करो, ये अहिंसा का पालना हो गया। अरे झूठ मत बोलो तो सत्य का हो गया पालन, चोरी मत करो तो अचोरी का हो गया। तो ये तो उसी पॉजिटिव को हमने नेगेटिव बनाया, नेगेटिव को नेगेटिव बनाया है। ये ऐसा हो गया है जैसा हमारे यहां होता रहा है ना, कि हमारे पंडित जयचंद जी छाबड़ा थे, तो उसका किसी ने गुजराती अनुवाद किया और फिर हिंदी में छापने के लिए उसका किसी ने फिर हिंदी किया। माने हमारे धर्म की चर्चा कैसी हुई ना, पहले हमने नेगेटिव बात करी और फिर जब पॉजिटिव की बात कही तो नेगेटिव को नेगेटिव बना के बात करी। भाई तो पॉजिटिव बात करते ना, करो क्या ये बताते ना, अहिंसा करो इसमें क्या करें। तो ये बताया है ना, शुद्धातम में रत रहो, ये निर्जरा का पॉजिटिव स्वरूप है ना, यही श्रेष्ठ आचार, ये सर्वश्रेष्ठ आचरण है। उसमें जो तुम्हारे व्यवहार आचरण है, जो तुमने गिनाए हैं जितने, वो बिना किए ही सिद्ध हो जाएंगे। जब तुम आत्मा में लीन रहोगे, आत्मा को जानकर, तो फिर झूठ चोरी कहां करने जाओगे, कैसे हिंसा करोगे, दृढ़ हिंसा भाव हिंसा दोनों ही रुक जाएंगे ना। तो वास्तव में पॉजिटिव रूप तो जे है। जैन धर्म में इतना नेगेटिव वर्णन है शास्त्रों में, मैं किसी विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं, आचार्यों ने किया वो, कई जगत के जीवों ने सब इसकी समीक्षा की यूनिवर्सिटी के लेवल पर, तो उन सब प्रोफेसरों ने ये कह दिया जैन धर्म निर्वृत्ति प्रधान है, और इसलिए वो बहुत कड़क है। आचरण की दृष्टि से जैनों को सर्वश्रेष्ठ माना सारे धर्म मानों ने, और उसमें से उन्होंने निवृत्ति, क्योंकि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, है ना। आजकल मान तो आप जानते हैं ना, मेनका गांधी का एक नारा है, वो भी अपन लोग शाकाहार में लग रहे ना, ऐसी वो भी इसी में लगी हुई है। लेकिन उसका इसमें ये कहना है कि तुम लोग अहिंसा नेगेटिव नेगेटिव बात करते हो, पॉजिटिव बात करो ना, जीवों की करुणा पालो, ठीक है ना, मैंने उन पर दया करो, उनकी उनको काटो मारो मत। ये तो काटो मारो मत, ये तो अहिंसा का नेगेटिव रूप है, वो पॉजिटिव क्या है, फिर उनका पालन पोषण करो, उनको घास खिलाओ, उनकी सारी सुविधाएं करो, उनका इलाज कराओ, इसके लिए वो पक्षियों का औषधालय खोलो, पशुओं की अस्पताल खोलो, वो इस रूप में कहते हैं। लोगों को कहती है हर एक से कि तुमने ये तो मान लिया, ये नहीं करते हम, ये नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन जैनियों ने कितने और पक्षियों के अस्पताल खोले, कितने गौशालाएं खोली। हमारे लोग गिनाने लगते हैं कि देखो दिल्ली में लाल मंदिर में पक्षियों का अस्पताल है, बहुत पुराना है, ये है वो है, हमने बहुत किया, बहुत गिनाने लगते हैं। और हमारे कुछ बड़े बड़े लोग हमें, हाँ हमें पॉजिटिव करना चाहिए, तो उन्होंने गौशालाएं खोलना शुरू कर दी। गौशालाओं में दूध होता है कि नहीं होता है, वो तो कभी होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि गोबर तो रोजाना गारंटी से होता है, तो गोबर गैस प्लांट लगने लग गया, पॉजिटिव करना है। तो ये गाय को बचाए और अनंत जीवों का हमें घात हो रहा है तो कोई विचार करने को तैयार नहीं है। हमने वो आप मिटा दिया ना, हम पर जो नेगेटिव पढ़ने का आरोप है, क्यों मैं ये कहना हूं असली पॉजिटिव स्वरूप क्या है, ये है। पर से तो कोई संबंध है ही नहीं, पर का तो हम भला बुरा कर ही नहीं सकते हैं। तो अपनी आत्मा में रत रहो, ये है पॉजिटिव अहिंसा, पॉजिटिव सत्य, पॉजिटिव अचौर्य, पॉजिटिव ब्रह्मचर्य, पॉजिटिव अपरिग्रह, समझे ना। तो ये अपने संबर है, ये निद्रा है और यही मोक्ष मार्ग है। अमरचंद ने लिखा ना संबर अधिकार के आरंभ में, उसमें ऐसा ही लिखा है, मैं क्या क्या शब्द है, स्वसमय प्रवृत्ति इत्यर्था ऐसा लिखा ना। काय की व्याख्या है वो, चार वाक्य हैं बहुत अच्छे संबर अधिकार की टीका में पहले ही पहले, जिसका अंतिम वाक्य स्व समय प्रवृत्ति इत्यर्थ कि अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना इसका ये अर्थ है, निकाला है। हाँ, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना वो चारित्र है ना। ऐसा लिया और फिर उन्होंने उसका अंतिम भक्ति क्या बताई ना, है स्वरूप में आचरण करना मैंने स्व समय में प्रवृत्ति करना, तो ये प्रवृत्ति थी। और अपने क्या है कि पर समय की निवृत्ति करना, पर की नहीं, पर तो अपना आज तक हुआ ही नहीं, पर में एकत्व ममत्व बुद्धि, उसका नाम है पर समय पना, है ना। स्वसमय और पर समय में तो अपने बहुत लिखा, समय सार में, प्रचन सार में, पंचाशिकाय के आधार पर सब पे बहुत लिखा। तो वो कहते हैं पर से निवृत्ति, पर में तो प्रवृत्ति तो आज तक की ही नहीं थी, मैं पर में प्रवृत्ति करता हूं ऐसा माना था, ऐसा जाना था, और ऐसे विकल्प इस प्रकार के विकल्पों में प्रवृत्ति की थी। विकल्प तो वह स्वाई थे, है ना, इसलिए वो उन्होंने कह दिया स्व प्रवृत्ति में पर से निवृत्ति तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, क्योंकि पर में प्रवृत्ति आज तक जीव की हुई ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तथ्य की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। मैं अपना और किसी का अपमान नहीं करना चाहता, अपना भी, कि शायद गुरुदेव श्री को अपन को पढ़ने नहीं मिलते तो हमारा मनोस्वभाव यहां ही चला जाता, हम शास्त्रों में से पढ़कर ये अर्थ नहीं निकाल पाते। ये कोई मेरा और आपका अपमान नहीं है, ये प्रत्येक जीव मात्र का अपमान है। क्या फिर पर के सहारे की बात हो जाती, क्यों लौट के वही चले जाते कि नहीं चले जाते, लेकिन ये तो कल समझ पाते कि नहीं समझ पाते, इस भ्रम में हमको ऐसा अवसर मिलता कि नहीं मिलता, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रताप से मिला है ये एक बहुत परम बड़ा सत्य है, जिसको कभी किसी भी कीमत पर इंकार नहीं किया जा सकता। आज मुझे इस बात का बहुत विचार आता है कई दफे, कि इतना इतना गुरुदेव ने बोला लिखा और हजारों लोग उस बात को बोल रहे हैं, और लोग ना सही और किसी बात की वजह से, लेकिन अपनी बात को काटने के लिए उसका पढ़ भी रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान इस परम सत्य की तरफ क्यों नहीं जाता, ये बहुत गहराई से मुझे चिंतन का विषय है। और इस दिशा में मैंने काफी कोशिश की, ऐसी कोशिश की कि जिन जिन लोगों से, चाहे वे विद्वान हों चाहे साधु संत हों, मुझे मिलने का अवसर मिला। ऐसा नहीं कि मैं अवसर खोजता फिर रहा था, समझिए ना, लेकिन कैसे ही समझ लो मिला सहज भाव से, तब मैंने हरेक को ये बात बताने की बहुत विनम्र शब्दों में कोशिश की। क्या? और किसी ने भी उस पर एक शब्द टिप्पणी नहीं की। हाँ ये बात तो ठीक, ऐसा कहा ये तो ठीक, आप कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन कह के फिर उसी के विरुद्ध बात चालू कर दी। अंततो गत्वा मैंने ये सोचकर उस पर अपने को बंद कर दिया कि कोई साहब नहीं है, इनकी स्वयं की काल लब्धि और जो भी जो पांच प्रकार की योग्यताएं हैं ना, पंच संवार जब तक नहीं आएंगे तब तक ये बात होने वाली नहीं है। आगम तो अगाध है और उसमें अप्रयोजन भूत तत्वों के बारे में किसी से भी चूक हो सकती है। आचार्यों ने के माना हमारे उनसे भी हो सकती है जो भावलिंगी संत थे। तो अपन तो कौन सी खेत की मूली है, अपन ये नहीं कहते हैं कि हमारे में कोई कमी नहीं होगी। कमी का मतलब प्रतिपादन की बात भी करते हैं ऐसे मतलब, लेकिन वो अप्रयोजनभूत तत्वों के बारे में और प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में इन दोनों का बहुत अंतर है ना। तो उन अप्रयोजनभूत तत्वों में कोई कदाचित भूल हो भी हो, ऐसा नहीं मैं मानता, तो उसको लेकर के उसको उठा देते हैं। अपने पास कोई रास्ता नहीं है उस विषय की चर्चा लंबाए नहीं, इसके लिए अपन हां हूं करके स्वीकार कर लेते हैं। आप समझे ना, इस बात पर विचार किए बिना के बाद में सचमुच वो बात सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती, उसके उत्तर भी हो सकते हैं, लेकिन सत्य असत्य के पढ़ने से उसको सिद्ध करने से अपन को क्या प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, ऐसा सोचकर उसको अपन जितने जल्दी निपटें, है ना। अपने है ना उत्तम क्षमा का रास्ता, क्षमा मांगो निपटो, लंबाओ मत विकल्प को, क्यों तो उसका वो नहीं रहता, ये गलती सुधार, ये गलती स्वीकार करिए, ये गलती स्वीकार करिए, करी है ना, अब वही मुख्य हो जाता है। जिसको गौण करने के लिए हमने स्वीकार किया था लौट फिर फिर कर वही मुख्य हो जाती है। क्या ये बहुत गंभीरता से सोचने समझने की बात है। अभी जब मैं आया था ना लोनावाला का अध्यास में जी सर्किल वाले एक मूर्ति विराजमान कर रहे अपने टोडमल स्मारक भवन में, लेकिन दिगंबर मूर्ति ये जो चार मूर्तियां रखी थी देखी थी आपने, उनमें से एक विराजमान कर रहे हैं लोग नंदा लाख कर, उनने खुद मांगी है ना। हमने ऑफर तो दिया था, लेकिन हमने कहा तुम पहला कलश ले लो 11 लाख का, मूर्ति की बात नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें तो मूर्ति दे दो, मूर्ति भैया 2115 से कम की नहीं है, तो 15 देंगे लेकिन मूर्ति दे दो। उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बात बीच में आ गई कहां से आ गई, लेकिन मैं ये कहता हूं हमने उस मामले में शांति हो जाए तो हमने कहा देखो भविष्य में जो होगा भविष्य में जो होगा भविष्य में जो होगा, वर्तमान में तो जो हो गया वो हो गया, हम भविष्य में हम इतने झंझट में क्यों पड़ेंगे। हमें अभी भी पता होता कि इतना झंझट होएगा हम अभी भी नहीं पढ़ते, और भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग है भी नहीं, बिल्कुल सहजता से ये बात निकली। कौन बनाता है इतना बड़ा मंदिर बनाए, अगर वो अपनी मूर्ति वहां विराजमान करे, क्यों इतना प्रयत्न के बाद तो होता नहीं है, इसलिए कोई प्रपोजल ही नहीं है। हमें 2-4 साल की जिंदगी है, उसमें हमें कोई आसपास भी ऐसा प्रपोजल नहीं दिखता है, इसलिए भविष्य में कुछ होने की तो संभावना ही नहीं है। अब कितनी सहज बात थी बोलो, अब क्यों भविष्य की चिंता कर रहे हैं, नहीं नहीं आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे ऐसा बता, अब क्या बता दें ये? हम कह रहे दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्यों नहीं नहीं आप देख लो नहीं कहना चल लिख लो नहीं और लिख लो और श्रीकाश मावी भाई क्या क्या हो गया इसने कौन जीत गया कौन हार गया क्या हुआ है ये समझ में नहीं आया। एक भाई का ऐसा फोन आया कि साहब आपने माफी तो मांग ही ली है अब थोड़ी लिखित और मांग लो। क्या साहबरा जी मैंने फोन रख दिया। बाद में क्या बात करे क्या कहे इसे इसको क्या कहे इसको इसमें ही रस है किसने माफी मांगी कौन जीता कोई हारा क्या किसने माफी कहां माफी मांगी क्या है कुछ नहीं हम तो अपने घर के बाहर गए नहीं सब हमारे घर पर आए हमको कितना मक्खन लगाया कितना तेल लगाया कितना मनाया ये तो हम जानते हैं कि मनाने वाले जानते हैं हमने ये बात कर ली अब ये है क्या वो सब जगह प्रचार हुआ साहब हमारा फोन पर देख दिया हमको ये कर दिया हमको ये क्या कर दिया तो तुमसे बात नहीं करना हो हमको वैसे इतनी सी तो बात है ना क्यों बोलो मैं ये बता रहा हूं कितना धर्म संकट है अंदर बाहर सब जगह और जिस मूल वस्तु पर ध्यान जाना चाहते वो उस पर ध्यान नहीं जाते। ये बात तुम्हें लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों का ध्यान इस मूल वस्तु पर जावे। अब वो कौन बता फिर जिनका जाएगा क्यों है? इसलिए भी कि तो आत्मा का कल्याण भी इसमें ही है और इसलिए भी कि मेरे नाम का झंडा लेके तुम लोग चलने वाले हो इसमें कहीं ऐसा न हो कि उल्टी बात कहो और मेरे नाम का झंडा लो। भगवान महावीर के साथ ऐसा अन्याय बहुत लोगों ने किया ना जो उन्हें जिंदगी में कभी कहा ही नहीं था वो उनके नाम पर खूब खूब लोगों कह रहे ना जगह जगह महावीर ने ये कहा महावीर ने ये कहा महावीर ने ये कहा क्या कहा है? देखो शुद्धात्म में रत रहो यही श्रेष्ठ आचार। ये बहुत मार्मिक पंक्ति है इसलिए मेरा चित्त आगे बढ़ता नहीं है। सबसे बढ़िया आचरण ये है क्या करें अब क्या बताएं अब आप तो जरा खोल के इससे क्या खोलें बोलो इसमें कुछ छिपा हुआ है? शुद्धातम में रत रहो यही शुद्ध आचार यही श्रेष्ठ आचार और शुद्धातम की साधना कही निर्जरा सार। निर्जरा का सार है शुद्धात्मा की साधना करना बस पता इतना सी बात है। देखो कुंदकुंदाचार्य देव ने क्या स्टाइल है समयसार की जितने शास्त्र लिखे जाते हैं आज भी हम लिखने की प्लानिंग करें सात तत्व पे कोई ग्रंथ लिखें तो जैसा तत्वार सूत्र है वो हमारा आदर्श है। पहले निर्जरा की परिभाषा बताएं फिर निर्जरा के कारण बताएं फिर निर्जरा कितने कितने कारणों से होती है उनके भेद प्रभेद बताएं फिर उनका स्वरूप विस्तार से समझा ये पद्धति होती है। अब यहां नंद निर्जरा की परिभाषा बताते हैं नंद निर्जरा की भेद बताते हैं नंद निर्जरा कैसे होती ना उन कारणों को गिनाते हैं कुछ अब कहां से शुरू करते हैं ज्ञान बंत के भोग निर्जरा हेतु है और अज्ञानी के वही कर्म फल देते हैं क्या हो क्या कह रहे जी कर क्या रहे। देखो 93 में गाथा अभी ये देर है मुझे शायद 2 दिन बाद नंबर आएगा इसका लेकिन अभी बता रहा हूं। उपभोगे हिमिंदिये हिम दब्बाण अतेतनान मिदे राणम नम कुण दी सम्मिलित थी और ये लिखने को मिला था इन्हें कि जितने भी चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग सम्यक दृष्टि जीव करते हैं चेतन और अचेतन द्रव्यों का जितना भी उपयोग सम्यक दृष्टि करते हैं वो सब उनके लिए निर्जरा का कारण होता है बंध का कारण नहीं है। उपभोग जो भोग है वो निर्जरा का कारण होता है इसी पर तो बनारसी दास ने एकदम ठप्पा लगाया कि क्या कह रहे ज्ञान बंध के भोग निर्जरा हेतु है अज्ञानी को वही कर्म फल देतु है यह अचरज की बात ये आश्चर्य की बात है, ये नहीं आ रही, ये मेरे हृदय में नहीं बैठती है। सुनता जैसे कहो, बूझे कोई शिष्य, कोई शिष्य ने पूछा तो गुरु जी समझा रहे। ये देखो माने निद्रा तत्व की बात यहां से शुरू करते हैं कि ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण नहीं, यानी क्या बात हुई, निद्रा कैसे होगी ये भी बताते तो हम तो समझ लेते। इतने कहते हैं तो भोग उन्हें भोग बता रहे। मेरे को भी बहुत विकल्प आ रहा है, क्या क्या है, ये क्या है। लेकिन मैंने बहुत गहराई से अध्ययन करके और करुणानी योग के सहारे से इसका बहुत बढ़िया उत्तर निकाला है। समय पे तो आए गई, अभी भी बता देता हूं, विकल्प आ जाता हूं। सम्य दृष्टि की लिखी ना, मतलब चौथे गुणस्थान वाले को पकड़े हैं अपन। यद्यपि सम्य दृष्टि तो सिद्ध भगवान भी है, लेकिन उनकी पहली शर्त तो पूरी होती है, दूसरी नहीं पूरी होती है। क्या कौन सा बोलो राज्य? चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग, ये तो चौथे वाले के ही सिद्ध होती है। चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग है ना, चेतन अचेतन देवों का उपभोग जिनके पाया जाता है। अब ऐसे भी सम्यक दृष्टि हो, अब जरा समझ लो, उसे उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं सरलता के लिए कि वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है। क्या इसलिए क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, छायक नहीं, क्योंकि उनके अंदर मिथ्यात्व और अनंतानुमानी के साथ सत्ता में पड़ी है। इसलिए ले रहा हूं। अब बिच्छों से गुणस्थान वाले हैं तो उसमें लोग आ गया चरित्र मोहे बस लेना संयम पे सुरनाथ जजे हैं, इनने तो जरा बंद रखी मुट्ठी, लेकिन तुम्हारे गोमन शाह ने तो इतनी खोली कि बहुत अटपटा लगता है। क्या लगे नो क्या नो त्रिशु स्थावर की हिंसा थी जो विरक्त नहीं है, नो इंद्रियेषु बिरदो नो जीवे थावरे तसे बापी जो सिद्धद्विजनतम सम्मादित्थी हवई जीवो। जो पांच इंद्रियों से विरक्त नहीं है, अचेतन अचेतन की हिंसा से विरक्त नहीं है, बस भगवान की बात को मानते हैं ये सच्ची है। जो सद्धद्वि जनकतम, जिन्होंने भगवान की कही हुई बात को मानते हैं वे अवरत सम्यक दृष्टि हैं। जब हमने गोमरसार पढ़ा था इस पर भी मेरे को बहुत विद्रोह हुआ था, गुरुजी से बहस भी बहुत करी थी कि क्या बात करते हैं। बस भगवान उन्हें अर्थ ही वैसा बताते थे, क्या कहते थे, अपन इतना मान लो कि भगवान ने कही वो सच्ची है, फिर क्या कही वो नहीं माना। क्या उन्हें उदाहरण दिया कि आलू में अनंत जीव होते हैं, अपने मान लिया था खत्म, कोई बहस नहीं करी उस पर। वो चरणानियों का उदाहरण देते थे, एक लाख जन का जमुदीप है मान लिया, समझे। अब जिन्होंने भगवान की बात कही हुई बात मान ली, हम संबंधित हो गए। तो ऐसा सम्यक दृष्टि मेरे गले उस दिन नहीं उतरा था। क्या सम्यक दृष्टि कैसा, जिन्होंने भगवान ने कही वो मान ली, और जिन्होंने भगवान ऐसे ऐसी थोक के गए हैं कि इतनी चकनियां हैं, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने ये सब, मतलब जो उस वक्त असंभव सी लगती थी, जिन्हें क्रमवत पर्याय की श्रद्धा नहीं है और केवल जी के ज्ञान की श्रद्धा नहीं है, उन्होंने क्या क्या कहा, जो कुछ कहा तो बस मान लें आग बीच के, वो जो बहस नहीं करें। अब फिर भी बहस आई तो फिर आगे और गजब किया, जो मैंने गोमर सार पढ़ा था वो बता रहा हूं, तुम पढ़ रहे ना गोमर सार, इसलिए बता रहा हूं। आगे आया कि वो मिथ्या दृष्टि अजान मानो गुरु नहीं होगा, समझ में आ गया तुम लोगों के, नहीं अभी तो पढ़ ही रहो ना। कोई अज्ञानी गुरु के निमित्त से सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है वो हम गलत बात समझ लें तो, सर्वज्ञ अज्ञानी नहीं है, क्या समझे ना। अब कोई चीज अभक्ष है और उसमें अनंत जीव है या असंख्य जीव है, और वो होते तो अनंत, और किसी अज्ञानी गुरु ने हमें असंख्य कह दिए, उसकी नहीं आई ख्याल में, है ना। अगणित कह दिए, अगणित का अर्थ जो गिनती में नहीं आए, जो गिनती में आ गए गणित गणित हो जाते हैं, ये तो अनंत नहीं रहे। तो अजान मान गुरु के नियोग से यदि हम झूठा भी समझ लें तो भी सम्मति दी। अरे बात सम्मय दृष्टि माने एक तो मान ले उनकी बात, मीन में एक नहीं करें हैं तो सम्मय दृष्टि, और दूसरे अजान मान गुरु के योग से गलत भी मान लें तो भी तुम्हारा सम्मय दर्शन कहीं नहीं जाएगा, फिर ये अटपटा लगा। तीसरी बात आ गई, सुत्ता दो तम सम्मम, ये इसलिए नहीं हृदय में नहीं जमी थी इसलिए गाथाएं याद हैं, नहीं तो गाथाएं याद भी नहीं रहती। क्यों सुत्ता दो तम सम्मम, लेकिन कोई बाद में सूत्र दिखाकर और आपको समझाए और फिर तुम नहीं मानो तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, और फिर मान लोगे तो फिर सम्मय दृष्टि। अब आज वो सब एकदम हाथ में रखे आंवले जैसा सत्य लगता है, क्योंकि वो तो इसकी बात कर रहे थे कि गुरुदेव जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आत्मा का स्वरूप आया है उसकी श्रद्धा करता है, और उसके बारे में कोई सूत्र में कहीं गड़बड़ समझ ले तो सूत्र से समझा देवे तो वो मान ली, इसकी बात है। ऐसे जब सीधी सीधी यह बात है तो इसलिए तो कह दिया समय सार मत पढ़ाओ, समय सार मत पढ़ाओ। हमारा एक सहपाठी था, अभी जिंदा है कि खत्म हो गया मुझे पता नहीं है, उनका नाम था अक्षय कुमार जैन, और वो इंदौर में ज्योत्साचारी बन गया था बाद में, लेकिन जिस पारोजी के स्कूल में मैं हेडमास्टर था उसके पहले वो हेडमास्टर था, समझे ना, पहले वो बन गया था फिर वो चला गया, फिर मैं आगे में बन गया था उसमें हेडमास्टर। तो हम इंदौर में गए उनके पास, वहां इंदौर में वो रहते थे, तो ज्योतिष का काम करने लगे थे, धर्म का काम उन्होंने छोड़ दिया था, धर्म के बाद में बनने था। तो हम बड़े वहां न्यायाधीश की परीक्षा देने गए थे, तो हमने मिला तो बोलने लगा कि मैं तो सब छोड़ दिया, ये सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, क्या है क्या है, क्या छोड़ दिया, क्या गड़बड़ लगा तुम्हें, बोले क्या है, सास नहीं लगा कितनी छकड़ियां हैं, कितने चूहे हैं, कितने बिल्ली है, कितने स्यार है, कितने कोई गिनती करने कौन बैठा था। उसको इसी बात से बड़ी अश्रद्धा हो गई थी, कहा कि गोमरदार ने लिखा है ना, सर्वज्ञता के बिना ये चीजें तो मान लो, सर्वज्ञता का स्वरूप समझे बिना तो अक्षय कुमार की दृष्टि में मूर्ख नहीं है वास्तव में। क्या हमने तो उनसे कहा गया, देखो भैया तुमने अच्छा किया समाज को छोड़ दिया, न मालूम कितनों को बिगाड़ देता हूं। अब वो ज्योतिषी करने लग गया था, ज्योतिष का काम उसने किया सारी जिंदगी, जब मैं इंदौर में रहा तब भी वो वहीं था, अब बहुत दिन पहले तक तो था, अभी है कि नहीं है पता नहीं है। तो ये जो जनोत्तम जनेन्द्र भगवान ने क्या कहा, ये आत्मा का स्वरूप जनेन्द्र भगवान ने कहा है वो उसकी बात है भाई साहब, इसकी बात नहीं है, मेरा मतलब समझ गया ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि तरुणा नियोग में लिखा है कि प्रथमा नियोग में जो लिखा है कि तरुणा नियोग में लिखा है, तीन बातें हो गई। प्रथमा नियोग में लिखा है कौन सा, काल से दूर वाली बात, तरुणा नियोग में लिखा है कौन सा, दृष्टि से दूर वाली बात, सूक्ष्म समझ गया जीवों का है। और करुणा नियोग में क्या लिखा है, क्या बोलेंगे, दृष्टि दृष्टि अंतरित, क्षेत्र से अंतरित, काल से अंतरित, और एक दृष्टि से अंतरित है। अब इन चीजों से जो है वो बातें हुई ना, उसका मतलब ये है कि उनको मानो, क्योंकि उनको मानने के लिए हम परीक्षा नहीं कर सकते, जिन जीवों में हम परीक्षा नहीं कर सकते उन चीजों में हमें भगवान की वाणी के आधार पर मान लेना चाहिए, ये परम सत्य है। तो यहां अपनी बात तो हो गई ना, जय चलो यहां चल रहे हैं। शुद्धात्म में रत रहो, यही श्रेष्ठ आचार शुद्धात्म की साधना। जीवाधिकार से समराधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थ विकारी भावों से भिन्न बताकर, इतना ही बताया एक लेन में, संबर अधिकार तक की बात आ गई। 192 गाथाएं एक लेन में आ गई। अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया और अब निद्रा का अधिकार में संबर दशा को प्राप्त सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्मा की आराधना करके विकारी भावों रूप भाव कर्मों एवं ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों की निद्रा कैसे करता है यह बताते हैं। इस निद्रा अधिकार का मैं क्या बताएंगे, ये इसका सारांश है। वास्तविक निद्रा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि ही है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है उसे भी निद्रा कहा जाता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों के दोनों प्रकार की निद्रा निरंतर होती रहती है। एक बात छूट गई जो बीच में अपन कह रहे थे, कर्णों योग के आधार पर, कि वो जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है उसके अंदर में सत्ता में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय मौजूद है। अब उसका उदय काल आएगा तो क्या होगा, तो अभी सीधा सत्ता न्याय लगता उदय आएगा तो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मिथ्यो दयेन जीवो मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है ना, अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा पुनस्थान हो जाता है। अन्यदो अनंतान लिखा ना गोमठ साल में ही सब, तो अभी हमको ये लगता है वो मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व तो उसके अंदर बैठा है। यदि वो छायक सम्यक दृष्टि होता तो मिथ्यात्व तो है ही नहीं, उपसम सम्यक दृष्टि होता तो मिथ्यात्व का उदय आता तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो जाता। लेकिन वो मिथ्यात्व का उदय नहीं आ करके सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आया, समझे, देशघाती प्रकृति का, इसलिए वो छह उपसम सम्यक दृष्टि हो गया। अब वो पूरी लंबी परिभाषा समझ लेना, मुझे अभावी क्षय और आगामी निषेक वो करणानी के हिसाब से रुक गए। अब वो जो अंदर में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के साथ पड़ी है, अब वो उदय में आएगी तो क्या करेंगे, उपसम सम्मान दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि हो जाता उदय में आती तो, सुनना, सहायक सम्मान दृष्टि के है ही नहीं तो उदय में आएगी कैसे। अब ये सर्वोपम सम्मान दृष्टि जीव के वो उदय में आती और ये समय दृष्टि बना रहता है, ये कैसे होता है कि वो कहते हैं उदय में आती है लेकिन उसका उदयाभावी क्षय होता है, कि उदय के अभाव रूप क्षय, कार्यकारी तो उदय होता है, सत्ता में पड़ा तो कोई कर्म कुछ करता नहीं है, है ना, तो उदय के अभाव रूप क्षय है उसका। अब वो अप्रत्यक्ष अनावरण मिथ्यात्व जो है वो भी निश्चय मिथ्यात्व समय प्रकृति मिथ्यात्व, समय प्रकृति मिथ्यात्व बन के उदय में आता है, अनंतानुबंधी अप्रत्याखाना बन के उदय में आता है। इस तरह वो अंदर का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय की प्रकृति एक गलती रहती है। ये समयोत्सव संबंध दृष्टि होने का सबसे बड़ा लाभ है कि उसका फल तो भोगना नहीं पड़ रहा और वो निकल गई, मिथ्या दृष्टि के वो निकले तो फल भोगना पड़ता है, और इसके निकल गई धीरे धीरे पांचवा गुणस्थान हो जाए तो वो प्रत्याख्यान बंद हो गई, अब प्रत्याख्यान से प्रत्याख्यान हो गई, ऐसी निकलती रहती है। तो अब वो युद्ध के काल में भोग के काल में भी वो काम चालू रहता है। ये तत्वासूत्र में एक सूत्र है और गोमरसार की दो गाथाएं हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक है ना, ऐसी दो गाथाएं गोमठ साहेब हैं कि इनकी असंख्य गुण नजरा प्रति समय असंख्या गुणी नजरा होती रहती है। अब वो गुण श्रेणी है कि दूसरे प्रकार की वो करुणानियों को वाले समझा जाएंगे, माने वो निद्रा होती रहती है, माने कर्म उदय में आके खिरता रहता है और भाव निद्रा की अपेक्षा वो शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। अब देखिए तो वो अकेले सामायिक के काल में होता हो, शुद्धोपयोग के काल में होता हो, ऐसी बात नहीं है। शुद्धोपयोग का समय तो 14-15 साल में 6 महीने में एक दफा हो आत्मा का अनुभव रूप, लेकिन ये काम तो बराबर प्रति समय चालू है। तो भोग के काल में भी निद्रा होती रहती है, इसको उन्होंने भोग निद्रा ऐसा लिख दिया। कृष्ण महर्षि के भोग के बात तो ऐसी है, भोग से नहीं हो रही निद्रा, भोग के काल में हो रही। तो आपको फिर ये तो अन्याय है, अन्याय नहीं है। क्यों कि भोग से तो ना बंद होता है ना निद्रा, बंधाधिकार में लिखा ना, क्या क्या लिखा, पंच इंद्रियन के भोग सो कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध जात साधु, ज्ञाता विषय भोग सो इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। तो उस भोग के काल में भी और युद्ध के काल में भी वो निद्रा असंख्य गुणी होती रहती है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा ऊपर का थोड़ा बहुत, भोग के काल से उसमें थोड़ी ज्यादा होती होगी, लेकिन वो असंख्य गुणी निद्रा जिसे यहां बोलते हैं 8-11 स्थान है, वो वाली निद्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कह रहे वो वाली निद्रा में फर्क नहीं पड़ता, बाकी की में नहीं पड़ता, ऐसा हम नहीं कह रहे। आया समझे आपके, आपने जितने पैसा बैंक से लिए हैं आपको उतना ब्याज देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। अब आप जाके कहीं नौकरी करके कमा लोगे कुछ पैसा, तो उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये कर्मानुयोग से भी सिद्ध हो गया कि भोग के काल में निद्रा होती रहती है, इसको उन्होंने ज्ञानमंद के भोग निद्रा हेतु में ऐसा कह दिया। इतनी सी बात है, अभी सारी समस्या का समाधान इसमें यह है। अमरचंद के पीछे लोग पड़ गए, नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, वो भोग है वो निद्रा, हम तो नहीं मानते। तो उन्हें गुस्से में कहो या झुंझलाकर कह दिया कि तेरे बिना क्या नाम नहीं, नहीं मैं नहीं जानता क्या होता ना। ऐसे शब्द है, एक बहुत अच्छी पंक्ति है कलश में, ज्ञानी भोग भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं मैं नहीं जानता। ऐसा शब्द बहुत अच्छा भी याद नहीं आ रहा है, क्या होता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता है। तो मैंने नीचे लिखा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम जानते नहीं है, जानते तो सब हैं। अब फिर तुम गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ते के न जानी मही, नहीं ऐसा लिखा है। वे लोग भोगी हैं कि नहीं हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ते के न जानी महे, वे भोगी हैं उन्हें भोग, तुम 7 शब्दों में बोलो, 1 शब्द में बोलो भोगी है क्या नहीं है, भोगी हो क्या नहीं है। अब भोगी बोलते हैं तो वो नहीं होता, नहीं भोगी की बोलते हैं तो भोग तो रहे हैं सामने। तो मैंने कभी भोगते हैं क्या नहीं, ऐसा लगा दुर्वासी भुगता ऐसा है, हाँ दुर्भुक्त वह। अब शब्द दिमाग में से निकल जाते, मैंने लड़ता तो हूं ही कभी, आज तक मैंने एक शब्द नहीं लटा। वो उसमें जो मेरा मंथन चलता है उसमें से कुछ शब्द याद रह जाते हैं, हैं? ते के न जानी महे दुर्भुक्ता सी, वे दुर्भुक्त हैं भुक्त नहीं है। तो ये बातें ये सब हैं, इस निद्राधिकार में ये सब बातें विस्तार से आएंगी। यदि जो मैंने अभी बताया है वो बात आपके ख्याल में आ जाएगी तो निद्राधिकार चुटकियों में निकल जाएगा, और वो नहीं आएगी तो माथा धुनते रहना। क्या वास्तविक निद्रा तो निजात्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धि की वृद्धि ही है, किंतु उसके निमित्त से जो सत्ता में विद्यमान कर्मों का अभाव होता है उसे भी निद्रा कहा जाता है। सम्यक्दृष्टि धर्मात्मा जीवों के दोनों प्रकार की निद्रा निरंतर होती ही रहती है। धर्म की उत्पत्ति संवर, धर्म की वृद्धि निद्रा और धर्म की पूर्णता मोक्ष है। आत्मशुद्धि ही धर्म है, अतः इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, निर्भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक होने वाले आत्मध्यान से जो शुद्धता प्रकट होती है वह संवर है। उसी आत्मध्यान से उक्त शुद्धता में जो वृद्धि होती है वह निद्रा है, और उसी विधि से पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना मोक्ष है। इस अधिकार की आत्मख्याति टीका का आरंभ अमृतचंद इस नाटक समय सार के रंगमंच पर अब निर्जरा प्रवेश करती है इस वाक्य से करते हैं। अर्थात प्रवृत्ति प्रवृत्ति निर्जरा, देखो अब निर्जरा प्रवेश करती है। अभी क्या हुआ, वो निकल गया, कौन संवर, संवर आया था और निकल गया, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा है, बनारसी दास का बोलता हूं। सबरनी संबर की दशा जथा जुगति परवान, मुकति बरगनी निर्जरा सुनो भविक धरकान। मैंने संबर की दशा युक्ति प्रमाण, युक्ति और प्रमाण, युक्ति माने किसे कहते हैं, प्रमाण नया आत्म को युक्ति, प्रमाण और नए के कथन को युक्ति बोलते हैं। तो युक्ति के अनुसार, प्रमाण माने प्रमाण नहीं, युक्ति के अनुसार, प्रमाण माने अनुसार, प्रमाण है। बरनी संवर की दशा यथा जुगति परमान, यथा योग युक्तियों के आधार पर, और मुक्ति बेतरनी निर्जरा, ये मोक्ष को बांटने वाली निर्जरा है। ये मुक्ति बेतरनी ये विशेषण दिया है बनारसी दास ने। सुनो भगवत धरी कान, हे भव्य जीवो कान दे के सुनो। निकालो पेज नंबर 140। इस अधिकार की आत्मख्याति टीका का आरंभ अमृतचंद देव अथ प्रवृति निर्जरा इस नाटक समय सार के रंगमंच पर हम निर्जरा प्रवेश करती है इस वाक्य से करते हैं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस बात को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। बहुत मार्मिक है, उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। इसे छांट छांट के लाए वहां से सब जो अच्छी मार्मिक बातें थी। अवयया श्रृंगार रहित पात्र के समान शुद्ध जीव स्वरूप संबल रंगभूमि से निकल गया। क्या लिखा, जैसे स्टेज पर जितने भी लोग आते हैं ना तो पूरा श्रृंगार करके आते हैं, है ना। वो श्रृंगार करने वाले अलग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, रंगमंच में उनको श्रृंगार करते हैं ना नायकों नायिकाओं को। अब ये जो संबल था इतने ही श्रृंगार किया गया है, और ऐसा बिल्कुल ऐसा समझना जिस जैसे कपड़े हमेशा पहने रहते ऐसे ही पहने रहता है। अब कोई स्टेज पर जैसे सफेद कुर्ता पहने आ जाए हमेशा रहता वैसे ही, क्यों हो जाए ना, क्या क्या है, पंडित है इसलिए ऐसे कपड़े पहनता है, और पंडित जी का पाठ करना हो तो दूसरे कपड़े कहां से डालेगा। क्या लिखा देखो, यहां श्रृंगार रहित पात्र के समान, जैसे कोई बिना श्रृंगार किए पात्र आ गया हो स्टेज पर, शुद्ध जीव स्वरूप संबर, शुद्ध जीव रंग भूमि से निकल गया, अब बीतराग निर्विकल्पक समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षण वाली एवं संबर पूर्वक होने वाली निर्जरा प्रवेश करती है। अब शुद्धोपयोग लक्षण वाली इन्हने कर दी ना, शुद्धोपयोग लक्षण वाली। अब शुद्धोपयोग हमेशा तो होता नहीं, देखो अमृत चंद्र और जैसेन में यही फर्क है कि जब वो उस निर्जरा की बात कर रहे हैं कि जिस निर्जरा से 24 घंटे कर्म का निर्जरा होती रहती है, और वो तो भोग के काल में भी होती रहती है, तो उसे शुद्धोपयोग से ही क्यों जोड़ दिया, उसे मन शुद्ध परिणति से भी तो लक्षण वाली कह दिया ना। अमृतचंद से ऐसी बात नहीं होगी, शुद्ध परिणति लक्षण वाली भी तो निर्जरा है। आज ही मैंने नियम सार में कल ही लिखा है, वहां भी ऐसा ही प्रकरण आया है, तो उसमें मैंने कहा कि ये तो भाई 24 घंटे रहने वाली उसकी बात है, वो चल रही समाधि, समाधि अधिकार है, नहीं भक्ति अधिकार, समाधि अधिकार हो गया भक्ति अधिकार में, तो उसने भक्ति भक्ति, तो मैंने कहा ये तो 24 घंटे रहने वाली निश्चय भक्ति है। अब संकट खड़ा हो गया, या तो वो शुद्धोपयोग रूप हो तो आंखें बंद करके हुए, तो उसकी तो बात वहां करनी रहे, क्योंकि वो कह रहे 24 घंटा रहती है, उसने क्या शब्द पढ़ा है उस नियमसार में कि वो निरंतर होती रहती है निद्रा, तो निरंतर निद्रा होती रहती है तो वो निरंतर रहने वाला ना तो शुद्धोपयोग है क्या। तो अब वहां पर क्या ले रहे हो भक्ति को, कौन सी भक्ति ले रहे ना, वहां मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप भक्ति है, मन में ऐसा सोचना भगवान के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, और वचन से बोलना ये भक्ति कहती है, और क्रिया से नमस्कार आदि करना ये मनोवचन का आएगी भक्ति, व्यवहार भक्ति है ना दादा, तो ये भी नहीं है और शुद्ध उपयोग भी नहीं है, निश्चय भक्ति भी नहीं है और उसे निरंतर रहने वाली कह रहे हैं, तो ये शुद्ध परिणति रूप भक्ति की बात है और उसको वहां निश्चय भक्ति का है। कौन सी कहता है, तुम बहुत बोलते हो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें विवहार से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में विवहार से, वो परम भक्ति का जिन सूत्र में, तो कौन सी लेना, मैंने कहा ना शुद्ध उपयोग वाली ले सकते हैं अन्ना, वो ले सकते हैं मनोवचन काय वाली, तो कौन सी भक्ति लेंगे फिर, जो परिणति में शुद्धि रूप निरंतर विद्यमान है वो भक्ति लेना। ये कल की तीन चार पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वो आपको बता रहा है, संबंध हो गया अभी कल।